आपने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हमसे बात तक करना जरूरी नहीं समझा? ये नहीं सोचा कि आपके इस फैसला का हम सब पर क्या असर पड़ेगा? हम तो बड़े हैं, संभाल लेते खुद को, पर अंशु का क्या? माँ कहती है ना, आप खुद को उनकी, फिर कैसे एक पत्नी के आगे एक माँ हार गई? उनकी तो सुबह भी आपसे होती है और रात भी आपके आंचल की छाँव में होती है। आपने उन्हें छोड़कर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वो नन्ही सी जान कैसी रहेगी अपनी माँ के बिना? सालों से माँ के प्यार के लिए तरसती आ रही है और उनके जीवन में उस कमी को आपने पूरा किया, फिर क्यों जाते हुए आपके मन में उनका ख्याल तक नहीं आया? कैसे आप फिर से उनसे उनकी माँ के आंचल को छीनने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाई? एक बार भी उस मासूम के बारे में क्यों नहीं सोचा? आरवी को अब एहसास हुआ कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने सिर्फ शान के बारे में सोचा, जबकि उससे उसका रिश्ता तो अब तक भी पूरी तरह जुड़ा ही नहीं था, लेकिन बाकियों से तो उसका रिश्ता इस घर में कदम रखते के साथ ही जुड़ गया था। शान इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रहा था, फिर भी इस घर के हर शख्स ने उसे दिल से अपना लिया था। शान की पत्नी आज तक नहीं बन सकी थी, पर उनकी बहू के साथ साथ बेटी भी बन चुकी थी। अंशु तो उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रहती थी, फिर कैसे उसने एक शान के कहने पर उन सबको छोड़ने का फैसला कर लिया? आकृति ने अपनी निगाहें झुकाए हुए ही भारी आवाज में कहा, सॉरी बड़ी माँ, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं भी आप सबसे और अंशु से बहुत प्यार करती हूँ और वादा करती हूँ कि दोबारा कभी भावनाओं में बहकर ऐसा फैसला नहीं लूंगी जिससे आपको, अंशु को या बाकी सबको तकलीफ पहुँचे। इस बार माफ़ कर रहे हैं क्योंकि पहली बार आपसे कोई गलती हुई है। हालांकि गलती इतनी बड़ी है कि माफ़ी देना आसान नहीं है, पर क्योंकि इसके लिए हमारे ही बेटे ने आपको उकसाया है, मजबूर किया है, इसलिए हम आपको माफ़ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे से आप ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत बिल्कुल नहीं करेंगी। भूलिएगा नहीं कि शान के साथ साथ आपका हम सबसे भी कोई रिश्ता है। जितना शान का हम सब पर और इस घर पर अधिकार है, उतना ही आपका भी है। इसलिए आपको इस घर से और अपने परिवार को छोड़कर कभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर शान आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या कुछ कहते हैं तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए उन्हें, या फिर हमें बताइए, हम उनकी अकल ठिकाने लगाएंगे, पर उनके वजह से आपको कहीं जाने नहीं देंगे। अर्पिता जी का पूरा शक शान पर ही था। आखिर जिस तरह से सुबह उसका व्यवहार रहा था, उससे उसको शक करना लाजमी ही था, और इसी शक के वजह से उन्होंने आखिरी के शब्द सख्ती से शान को घूरते हुए कहे थे, या ये कहें कि उसको धमकी दे दी थी और आरवी को समझा भी दिया था। आरवी ने पलटकर कुछ कहा तो नहीं, पर सिर जरूर हिला दिया। पैर जख्मी थे, पर इतनी देर गाड़ी में बैठने के वजह से पैरों से खून रिसना बंद हो चुका था, लेकिन अब चलने और फिर इतनी देर खड़े रहने के वजह से जख्मों पर दबाव बढ़ने लगा था, जिस वजह से एक बार फिर पैरों में दर्द बढ़ने के साथ खून भी रिसने लगा था। आरवी ने अपनी मुट्ठियों को कसा हुआ था, शायद दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी दर्द की रेखा चेहरे पर नजर आने लगी थी। अर्पिता जी ने उसको समझाया, फिर प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, चलिए अब आप अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आइए, सब नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आरवी ने किसी तरह लबों पर हल्की मुस्कान सजाकर सिर हिला दिया और ना चाहते हुए भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जहां इस वक्त शान खड़ा था। शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था या फिर फोन का बहाना बनाकर दोनों की बातें सुन रहा था, ये तो वही जानता था। आरवी के वापस आ जाने से अर्पिता जी की बहुत बड़ी चिंता खत्म हो गई थी। उन्होंने डाइनिंग एरिया की तरफ मुड़ने के लिए कदम घुमाए, तभी अचानक उनकी नज़र फ्लोर पर पड़ गई। जिस जगह अभी कुछ सेकंड पहले तक आरवी खड़ी थी, वहां खून से सने पैरों के निशान बन चुके थे। ये देखकर उनके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उन्होंने जल्दी से उस तरफ देखा जहां से आरवी जा रही थी, तो वहां भी आरवी अपने पीछे पैरों के निशान छोड़े जा रही थी। कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वो आगे बढ़ रही थी। अर्पिता जी ये देखकर जितनी हैरान हुई, उससे कहीं गुना ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आरवी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक ही उसके कानों में अर्पिता जी की चिंता भरी आवाज पड़ी, आरवी बेटा, आपके पैरों में क्या हुआ? ये खून के निशान कैसे? आरवी के आगे बढ़ते कदम रुक गए। वहीं सीढ़ी के पास खड़े शान की निगाहें भी अर्पिता जी की बात सुनकर आरवी के पैरों की तरफ घूम गई। उसको अचानक ही ध्यान आया कि आरवी के पैर तो जख्मी थे, वहीं से खून रिस रहा होगा। ये सोचकर एक पल को उसके चेहरे के भाव बदले जरूर, पर अगले ही पल चेहरे पर सख्त भाव उभर आए और उसने बेरुखी से उस पर से निगाहें हटाते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। आरवी अर्पिता जी की बात का मतलब समझ चुकी थी। उसने उनकी तरफ मुड़ते हुए फीकी मुस्कान के साथ कहा, बड़ी माँ, बस हल्की सी चोट लग गई थी, चिंता वाली कोई बात नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। उसका ये बेफिक्री भरा जवाब सुनकर अर्पिता जी के भाव एकदम से सख्त हो गए और उन्होंने आरवी को घूरते हुए हल्के गुस्से से कहा, इसे आप हल्की सी चोट लगना कह रही हैं? पहले देखिए कि कैसे आपके पैरों के निशान छप गए हैं फर्श पर, और आप चाहती हैं कि हमें चिंता भी ना हो? आरवी की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया। अर्पिता जी ने अब जाते हुए शान को देखा और तेज आवाज में बोली, शान, यहाँ आइए। शान ने पहले तो उनकी आवाज को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब वो उसे क्या कहेंगी, पर जब अगली बार अर्पिता जी ने थोड़े गुस्से में उसे पुकारा तो ना चाहते हुए भी उसे रुकना ही पड़ा। उसने पलटकर अर्पिता जी को देखा तो उन्होंने आगे कहना शुरू किया, वापस आइए और आरवी को अपने साथ रूम में लेकर जाइए, साथ में उनके पैरों की ड्रेसिंग भी कर दीजिएगा, हम आप दोनों का खाना वहीं भेज देंगे। मैं क्यों लेकर जाऊं उसे अपने साथ, उसके भी दो पैर हैं। अगर आना होगा तो खुद आ जाएगी, और अगर बस की नहीं है तो यहीं पड़ी रहे, ऊपर आने की जरूरत भी नहीं है उसे। शान ने तो साफ इनकार कर दिया। महीनों बाद पहले वाला शान नजर आ रहा था उसके अंदर, या शायद अब वाला शान पहले से भी ज्यादा रूठ था आरवी के प्रति। उसकी बातें सुनकर जारवी की आंखें आंसुओं से लबालब भर गई, पर उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। वहीं अर्पिता जी के भाव एकदम से सख्त हो गए। अब उन्होंने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, हमने आपसे पूछा नहीं है कि आप उन्हें लेकर जाएंगे या नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा आदेश है। अगर आपने हमारे आदेश की अवहेलना की तो हम समझ जाएंगे कि आपकी नजरों में हमारी बातों की कोई मान नहीं है। आप हमारी जरा भी इज्जत नहीं करते, और जहां हमारी इज्जत नहीं हम वहां नहीं रह सकते। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप सोच लीजिए, आप आरवी को लेकर रूम में जाएंगे और उनके पैरों के जख्मों की मरहम पट्टी करेंगे, या हमें इस घर से जाते देखना चाहेंगे। अर्पिता जी ने उसको धमकी दी, जिसे सुनकर शान का भाव बदल सा गया। उसे अब अर्पिता जी पर गुस्सा आने लगा था। सुबह से ये दूसरी बार था जब उन्होंने घर से जाने की बात की थी, और वो जानती थी कि शान उन्हें ऐसा करने नहीं देगा, इसलिए वो जानबूझकर उसको इसी बात से धमका रही थी, उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर रही थी, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। यही वजह थी कि वो अब उनकी बात से बुरी तरह चिढ़ चुका था, पर कुछ कह भी नहीं सकता था। टू बी कंटिन्यूड।